ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में हर संडे की तरह। तो आप सब परिचित हैं कि इस्कॉन की ओर से पूरे विश्व में वर्ल्ड होली नेम वीक मनाया जाता है। सारे देशों में जहाँ जहाँ इस्कॉन के डिवोटीज हैं, भक्त हैं या सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, वहाँ एक हफ्ते के लिए विश्व हरिनाम उत्सव मनाते हैं। हर प्रकार से, हर स्थिति में, हर समय में जितने भी भक्त हैं वो प्रयास करते हैं अधिक से अधिक भगवान नाम का उच्चारण करने का और अधिक से अधिक हरि नाम दूसरों को प्रदान करने का। श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि भक्ति में उन्नति करने का सबसे शॉर्टकट क्या है। हम इस जमाने में या स्थिति में है, हम हर समय शॉर्टकट ढूंढते हैं, चाहे हमें कहाँ जाना हो तो भी शॉर्टकट, या किसी भी चीज, किसी भी कार्य को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्य ने जब पूछा कि कुछ शॉर्टकट है भक्ति में, तो प्रभुपाद ने कहा एक शॉर्टकट है। क्या है? जितना अधिक तुम कृष्ण दूसरों को दोगे उतने ही कृष्ण तुम्हें जल्दी तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो सकते हैं फास्ट। तो ये जो विश्व हरिनाम उत्सव है ये इसीलिए है क्योंकि हमें कृष्ण भक्ति में तीव्र गति से उन्नति करनी है, अपनी चेतना को तीव्रता से शुद्ध करना है। तो एक सरल उपाय है। क्या उपाय है? जिसको कहते हैं वॉकी टॉकी। जैसे वॉकी टॉकी होती है, एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा दूसरी तरफ सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, इस तरफ सुनता है। तो यही शॉर्टकट है, कृष्ण के बारे में बोलना और कृष्ण के बारे में सुनना, सबसे ये शॉर्टकट वे है। तो जितना हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं कृष्ण को दूसरों को देने का, उतने ही मात्रा में कृष्ण अपने हो जाते हैं, कृष्ण उस व्यक्ति के हो जाते हैं। कृष्ण उस व्यक्ति से अधिक प्रेम रखते हैं या उस व्यक्ति के अधिक करीब जाते हैं जो सदैव एक ही प्रकार की चिंता करता है। कौन सी चिंता? कैसे मैं कृष्ण दूसरों को बांटूं, क्योंकि वो व्यक्ति सबसे उदार व्यक्ति कहलाता है, जिस व्यक्ति के पास सर्वोच्च चीज आ गई है और वो अपने पास नहीं रखना चाहता, कुछ कंजूस लोग होते हैं उनके पास कुछ मूल्यवान वस्तु आती है तो अपने पास ही छुपा के रखना चाहते हैं, दूसरों को देना नहीं चाहते। भौतिक जगत का स्वभाव क्या है, चीज देने से कम हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का स्वभाव क्या है, देने से उसकी वृद्धि होती है। इसी प्रकार से भगवान नाम, भगवान रूप, गुण, लीला, ये जितना हम दूसरों को बांटते हैं उतनी हमारे पास उसकी, हमारे हृदय में वृद्धि हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तार यही देश। तो भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और कृष्ण भावना भावित बनने का सर्वोच्च और सरलतम उपाय हमें सिखाते हैं। लेकिन हम इतने अधिक मूर्ख हैं, इतने अधिक अदम हैं, पतित हैं, नीच हैं, अयोग्य हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु की इस शिक्षा को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहते। हम हजारों बहाने ढूंढते हैं सेवा न करने के, भगवत भक्ति न करने के, कृष्ण कथा न सुनने के, कीर्तन में भाग न लेने के, हजारों बहाने हमारे पास होते हैं, जप न करने के बहाने होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु वो व्यक्ति है जो कृष्ण भावना की शिक्षा दूसरों को प्रदान करता है, और विशेष रूप से भगवान का ये जो पवित्र मधुर कृष्ण नाम है उसकी शिक्षा दूसरों को देता है। तो कोई भी गुरु बन सकता है, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। गुरु बनने की योग्यता क्या है कि कृष्ण तत्व में आप निपुण होने चाहिए। और कृष्ण तत्व क्या है, सबसे प्रथम तत्व है कि कृष्ण और कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम नामी अभिन्नत्वा नाम नामी न हो, कि भगवान का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम इतने अधिक दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें वो महसूस नहीं हो रहा है, हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो कृष्ण जो मैं अपने मुख से बोल रहा हूं ये साक्षात कृष्ण है। हम सोचते ये तो ऐसे एक शब्द ध्वनि है। तो जब आप कृष्ण कहते हो तो आपको इतना अधिक गंभीर होना चाहिए, इतना अधिक अटेंटिव होना चाहिए कि साक्षात कौन आपकी जीवा पर है, कृष्ण है। कोई बड़ा व्यक्ति आपके पास होता है तो आप कितने सावधान हो जाते हो। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण कॉन्शियस होने से पहले हमें कॉन्शियस होना चाहिए, सावधान होना चाहिए जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं। तो गुरु का मतलब ही है कि जो कृष्ण तत्व में निपुण है। छोटा सा बालक भी गुरु हो सकता है। जैसे प्रभुपाद के एक अमेरिकन शिष्य थे, पति पत्नी शिष्य थे, श्याम सुंदर और उनकी पत्नी मालती। तो प्रभुपाद ने कहा, उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम क्या था, सरस्वती। हाँ, छोटी सी उनको बेटी थी जिसका नाम सरस्वती था। तो प्रभुपाद ने कहा, ये कृष्ण भावना का प्रचार करना बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकता है। तो प्रभुपाद ने उस छोटी सी बेटी की ओर देखा, उन्होंने कहा, देखो बड़े बड़े पंडित लोग हो जाते हैं, बहुत शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है। अरे भारत में देखा जाता है, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, बहुत सारे तीर्थों की यात्रा की होगी, बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन उनको जब हम पूछते कि बताओ भगवान कौन है, तो उनके पास प्रश्न नहीं होता, उत्तर नहीं होता। तो प्रभुपाद ने कहा, हमारी ये छोटी सी बेटी सरस्वती उन बड़े बड़े विद्वान पंडितों से भी बढ़कर है, क्योंकि वो जानती है भगवान कौन है और वो दूसरों को शिक्षा देने में भी समर्थ है, वो गुरु है। तो जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने पूछा कि सरस्वती बताओ कृष्ण कौन है, तो वो तुरंत छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी थी, वो कहती है कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि कृष्ण कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा अपने शिष्यों को कहा देखो ये छोटी सी सरस्वती की ओर देखो, ये जानती है सारे शास्त्रों का सार। सारे शास्त्रों का सार क्या है? कृष्ण प्रभु है और मैं उनका सेवक हूं, दास हूं। इसी भावना को हमें सीखना है। सारे शास्त्रों की श्लोका हमने याद कर ली है, बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर ली, लेकिन ये भावना यदि हमने अपने जीवन में जागृत नहीं की तो श्रम एव ही केवलम, सारी चीजें व्यर्थ है। तो सारे शिक्षा का सार यह है कि कृष्णा आप प्रभु हो और मैं आपका सेवक हूं। इसी चीज को हमें बारंबार अनुभव करना है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य यह नहीं कि प्रोग्राम के बाद प्रसाद मिलता है, जीवन चला जाएगा, हाँ प्रोग्राम के बाद प्रसाद ही मिलने वाला है, लेकिन कृष्ण कभी मिलेंगे नहीं, भक्ति कभी मिलेगी नहीं। तो यहाँ आने का भावना क्या है कि मुझे जाकर सीखना है, भक्तों के संग में अनुभव करना है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका नित्य सेवक या दास हूं। और ये भावना दिन ब दिन हमारे हृदय में विकसित नहीं हो रही है तो इसका मतलब मेरे भगवत भक्ति में बाधा है, भगवत भक्ति उचित रूप से मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए सारे शास्त्रों का सार यही है। तो गुरु कोई भी हो सकता है जो कृष्ण तत्व में निपुण है, कृष्ण भावना में निपुण है। महाप्रभु ने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है। तो महाप्रभु ने कहा जे किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। किवा विप्र, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना का जो ज्ञान रखता है, कृष्ण तत्व को जानता है, वो गुरु बनने की योग्यता धारण करता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु ने जब सन्यास ग्रहण किया अपने 24 साल की आयु में, क्या आवश्यकता थी चैतन्य महाप्रभु को युवा अवस्था में सन्यास ग्रहण करने की? 24 साल की आयु में उनकी अकेली घर में माता थी, वृद्ध माँ, और अभी अभी उनके उनका विवाह हुआ था, कुछ ही महीने बीते थे उनका विवाह हुआ था, सुंदर युवती पत्नी थे जिनको उन्होंने त्याग दिया। इस संसार में अपने पारिवारिक संबंधों को त्यागना बहुत कठिन है। हम दिन ब दिन शारीरिक संबंधों में, पारिवारिक संबंध में आसक्त होते जा रहे हैं। फेविकॉल का मजबूत जोड़, जैसे फेविकॉल चिपकता है तो निकलता नहीं, वैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे हम अपने संबंध में क्या हो रहे हैं? आसक्त हो रहे हैं। बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे भौतिक आसक्ति हमारी शिथिल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इस अपने उस गृहस्थ आश्रम का त्याग करते एक प्रकार से और सन्यास ग्रहण करते हैं। सन्यास ग्रहण करने का उनका कारण क्या था? एक में वो कारण था कि दूसरों को कृष्ण भावना प्रदान करना, दूसरों के हित के लिए। अपना ये शरीर जब तक दूसरों के हित के लिए काम नहीं आता तो हम पशु के भांति हैं, पशु के समान हैं। हर कोई तो जी रहा है, कुत्ते बिल्ली सुअर गधा गाय, हर कोई जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, अपने लिए खा रहा है, अपने लिए कमा रहा है, उदर भरण के लिए जीवित है। तो यदि हम भी मनुष्य होकर केवल अपने लिए जी रहे हैं तो वो हमारा जो जीना है वो एक पशु के भांति है और हम कभी भी सुख अनुभव नहीं करेंगे, शांति अनुभव नहीं करेंगे जब तक केवल हम अपने लिए जीते हैं। जब हम दूसरों के लिए जीना सीखोगे तो आपके जीवन में आप चमत्कार अनुभव करोगे और एक अंतर महसूस करोगे कि वास्तव में जीवन कितना आनंददायक है। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं केवल दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों को कृष्ण भक्ति देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस संसार में जीव अपने प्रयास से जो मर्जी करे वो कभी शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। उसके लिए एक ही उपाय है, जब तक व्यक्ति कृष्ण के शरणागत नहीं होगा, उनकी भगवत भक्ति में नहीं लगेगा और मन शरीर वाणी से कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन सुखदायी या सफल नहीं हो सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने 24 साल की आयु में, कितने साल की आयु में, 24 साल की आयु में संन्यास ग्रहण करते हैं और संन्यास ग्रहण करके नवद्वीप मायापुर को छोड़कर, बंगाल को छोड़कर ओडिशा में जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और वहां काशी मिश्र का जो घर था, काशी मिश्र आलय जिसे कहते हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु रहने लगे और वहां कई सारे भक्तों के संग में वो रहते थे एक बड़े से घर में। तो वहां एक छोटा सा बालक आ जाता है जिनका नाम था मकर ध्वज पंडित, छोटा सा बालक था। लेकिन हाँ, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे जिनका नाम था वक्रेश्वर पंडित, उन्होंने वो छोटे से बालक को देखा, अरे ये बालक क्या है, बड़ा गुणवान है और ये भगवत भक्ति करना चाहता है। वक्रेश्वर पंडित ने उस बच्चे को ट्रेनिंग दिया, भगवत भक्ति की शिक्षा दी और उसको दीक्षा देकर कृष्ण की सेवा में रखा और वो बालक का नाम क्या पड़ा, गोपाल। क्या नाम पड़ा, गोपाल। तो सारे जितने भक्त चैतन्य महाप्रभु के संग में सब उसे कहते थे गोपाल 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 कहते थे। तो एक दिन ये गोपाल हरि नाम का उच्चारण करने में बहुत एक्सपर्ट था। हरि नाम का उच्चारण दो प्रकार से है, तीन प्रकार से नाम का उच्चारण किया जाता है। एक है उच्च ध्वनि में कीर्तन करना, जैसे हम माइक में कीर्तन करते हैं करताल मृदंग के साथ, वो स्वयं को भी लाभ मिलता है और दूसरों को भी जो सुनते हैं, कीट वृक्ष आदि दूसरे या मनुष्य, उनको भी लाभदायक है। और दूसरे प्रकार का नाहरि नाम का उच्चारण है स्वयं ही माला पर जप करना और इतना उच्चारण करना जिससे हम ध्यान पूर्वक अपने कर्णों के द्वारा कृष्ण के मधुर नाम को सुन सके। और तीसरी चीज क्या है, मन में हरि नाम का उच्चारण करना। तो हमारे लिए मन में हरि नाम का उच्चारण करना उचित नहीं है। जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं, सारे अनर्थों से अपराधों से रहित है, जिनका मन सदैव कृष्ण में लगा रहता है, उनके लिए मन में हरि नाम उच्चारण करना उचित है और उनका मन सदैव कृष्ण नाम में मग्न रहता है। तो हमारे लिए बाकी दो चीजें हैं, उच्च स्वर में कीर्तन करना करताल मृदंग के साथ और दूसरी चीज क्या है, हरि नाम का जप करना। तो ये चीज परम आवश्यक है। ये तो छोटा सा बालक सदैव हरि नाम करता था और वहां चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान में रह रहे थे उसे गंभीरा कहा जाता है। वहां एक भक्त था जो सदैव 24 घंटे कृष्ण नाम का उच्चारण करता था, वो सो भी रहा है तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग इधर आ जाइए बीच में, कितने दूर, आवश्यकता नहीं, यहाँ है फैन। तो चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में निवास कर रहे थे तो उस समय वो छोटा सा बालक निरंतर कीर्तन करता था और एक दूसरे भक्त थे जो सो भी रहे हैं तभी भी कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं हर समय। लेकिन जब एक बार वो जा रहे थे मल त्यागने के लिए, नेचर का कॉल अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने सोचा अभी अशुद्ध स्थान में मैं जा रहा हूँ टॉयलेट के लिए, तो वहां कैसे भगवान का नाम उच्चारण करूं। तो उन्होंने दोनों हाथों से अपनी जीभ को क्या किया, पकड़ के रखा। अभी हमारी जीभ खुली है तो भी कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करती, वो उच्चारण रोकने के लिए उनको क्या करना पड़ रहा था, जीभ को पकड़ना पड़ रहा था। अभी देखो यह है आसक्ति, कृष्ण नाम उच्चारण करने में ये आसक्ति है और ये वास्तव में नारद मुनि का कार्य है। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, नारद मुनि सदैव राधिका रमन राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं, वो जहां जहां घूमते रहते हैं। तो वैसे ये व्यक्ति कृष्ण नाम सदैव उनकी जीवा में होता था वो दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं कि नहीं अभी तो मैं मल त्याग करने के लिए जा रहा हूं, वो अशुद्ध स्थान है, वहां उच्चारण नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये छोटे से बालक ने वो देखा और उन्होंने कहा, अरे अरे आप क्या कर रहे हो, आपको चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का ज्ञान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः, कि भगवान का जो पवित्र नाम है उसमें भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी है। तो भगवान का नाम भगवान से एक प्रकार से देखा जाए अधिक सामर्थ्यवान है, अधिक दयालु है। कृष्ण इतने दयालु नहीं है जितना उनका पवित्र नाम क्या है, दयालु है। इसलिए इस संसार में भगवान के साथ हमारी पहली मुलाकात किसी चीज से होती है तो वो कृष्ण के पवित्र नाम के साथ। हमें भगवान के नाम को हल्का नहीं लेना चाहिए, चीपली नहीं लेना चाहिए। आप भगवान के नाम को बहुत हल्का या चीपली लेते हो तो कृष्ण भी आपको बहुत चीपली ले लेंगे, क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, कि जो जिस प्रकार से मेरी शरण ग्रहण करता है, मेरे अनुगत होता है, मुझसे आदान प्रदान करता है, वैसे ही मैं भी उस व्यक्ति से आदान प्रदान करता हूं। इसलिए भगवान नाम को कदापि ही अपने जीवन में हमें हल्का नहीं लेना चाहिए, चिपली नहीं लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से कृष्ण के पवित्र नाम को स्वीकारना चाहिए। क्योंकि भगवान का नाम हमें अभी बहुत सरलता से मिला है, इसलिए हम उसके मूल्य को नहीं जानते हैं। हमें लगता है तो ये तो ऐसी ही वस्तु है, लेकिन बल्कि भगवान का नाम ग्रहण करने के लिए देवी देवतागण भी तड़पते हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि इंद्र चंद्र वरुण शिवजी ब्रह्मा आदि देवता वो केवल प्रार्थना करते हैं कि कब हमें भारत वर्ष में जन्म मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा, और जहां भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, सहचार्य मिलेगा, और हम उन भक्तों के संग में कब वो दिन आएगा हम अपनी जीवा से कृष्ण के मधुर नामों का उच्चारण कर सके। देखो इतने बड़े बड़े देवतागण भी ये इच्छा ये आकांक्षा रखते हैं, लेकिन हमें इतना मूल्यवान ये हरि नाम मिला है, लेकिन हम उसको बहुत हल्का ले रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, हमें हम सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे। तो जैसे ही चैतन्य वो बालक ने कहा, गोपाल ने उनको कहा, अरे भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय उचित समय आदि का कोई नियम नहीं है, या किसी स्थान में लेना या नहीं लेना ये नियम नहीं है। किसी भी समय भगवत नाम लिया जा सकता है, किसी भी स्थान में भगवान का नाम लिया जा सकता है, हर समय हर स्थिति में भगवान का ये जो पवित्र नाम है वो लेने योग्य है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे, किस भौतिक जगत में जो 14 लोक है ना, नीचे के 7 और ऊपर के 7, 14 लोकों में कोई लेने योग्य वस्तु है तो वो कृष्ण का पवित्र नाम है। अभी हम अपने जीवन में बचपन से ही क्या क्या इकट्ठा करना है वो सीखते रहते हैं। छोटा हम बच्चे नहीं होते हैं तो हम मेरा खिलौना है, मेरी साइकिल है, तब से लगे रहते हैं मैं और मेरे के चक्कर में, और इकट्ठा करते रहते हैं इस सांसारिक जगत की वस्तुओं को। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जो इतने महान आचार्य थे, मैजिस्ट्रेट थे, जिनका आज आविर्भाव है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नहीं नहीं, आप धोखा खा रहे हो। इस सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने से क्या करोगे, आप केवल नरक गामी हो गए। इस भौतिक जगत के वस्तुओं में आसक्ति को केवल बढ़ा रहे हो। इस जगत में लेने योग्य, अपने कहने योग्य या संग्रह करने योग्य कोई वस्तु है तो वो कृष्ण का पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे उस बालक ने कहा कि जो मृत्यु है वो कभी भी आ सकती है, ऐसे नहीं कि आप टॉयलेट गए तो मृत्यु नहीं आएगी। कई लोग बाथरूम में जाके पांव फिसल के मरते हैं, घर में चेयर में बैठे बैठे मरते हैं, रात को सो रहे हैं, सुबह उनको जगाओ तो क्या हुए, और मरे हुए हैं। लंदन में जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो जब सो रहे थे तो सुबह जब जगाने उसकी सेविका गई तो वो क्या देखा, उसने वो मरी हुई है, लंदन की महारानी। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, मैं तो मेरा मृत्यु बहुत अच्छा आने वाला है, मैं तो धूमधाम से मरूंगा, नगाड़े बजाते हुए, शादी में बैंड बजाते हैं, वैसे मृत्यु नहीं आने वाली। मृत्यु सबसे भयानक वस्तु इस जगत की है, और उसका एक्सपीरियंस लाइफ में एक ही बार होता है। कितनी बार होता है? हाँ, वैसे हम मर रहे हैं, अभी हर क्षण हम क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, आयु कम हो रही है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो जीवन में एक ही बार आएगा, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उस अनुभव से नहीं गुजरेगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा उस अनुभव से गुजरने के लिए तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। जैसे आपको किसी जगह ट्रैवल करना है तो निकलते आप ट्रेन वगैरह पकड़ने के लिए तो तैयारी करते हैं, पहले निकलने से पहले सारी तैयारी करते, क्या मुझे लेना है क्या नहीं लेना है, बैग का साइज कितना होना चाहिए, यात्रा में जा रहा हूं तो कपड़े कितने होने चाहिए, बुक्स कितनी होनी चाहिए, मोबाइल साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, लैपटॉप भी जाएगा कि नहीं, सारी चीजें सोचते रहते हैं। तो वैसे ही मृत्यु भी वही है, हम नया ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं तो फिर सोचना होगा कि मेरी बैग पूरे जीवन भर हमें क्या करना है, तैयारी, बैग पैकिंग करनी है। ट्रैवलिंग से पहले जैसे कुछ लोग होते हैं 15 दिन पहले वो तैयारी करते, कहाँ जाना हो, हाँ वो कहते रहे हमें तो जाना है, कब जाना है, 1 महीने के बाद, तब से वो सोचते रहते कपड़े कौन से होंगे, बैग वगैरह सारे तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि वो रेयरली जाते हैं। तो हम भी जाने वाले हैं, हम भी यहाँ रहने के लिए आए नहीं है, हमें भी निकलना है, और उसके लिए हमें अपना बैग पैक करके रखना है, और बैग में सामान क्या क्या लेना होगा अपने साथ, एक ही वस्तु लेनी होगी। बाकी सारी चीजें जैसे आप फ्लाइट से जाते हो तो वह चेक किया जाता है, नहीं कि आप ये चीजें नहीं ले जा सकते, कई बार वो हटा देते हैं। मैं एक बार कलकत्ता से मुंबई जा रहा था लोकनाथ महाराज के साथ कुछ साल पहले, तो मैंने वो नरसिम्हा देव का ऑयल लिया था 1-2-3 बोतल्स। तो जब हम कलकत्ता एयरपोर्ट गए तो वहां जब चेकिंग हो रहा था उन्होंने सारा चीज निकाला, वो ऑयल भी कहते हैं कि आप अपने साथ ये ऑयल कैरी नहीं कर सकते, ये कुछ और हो सकता है। तो बहुत रिक्वेस्ट करके, हाँ बहुत गिड़गिड़ा कर उनको कहा, तब उन्होंने चुपके से, एक पुलिस था, कहता है प्रभु जी वो थोड़ा डिवोटेड टच होगा, उन्होंने कहा प्रभु जी इसको चुपके ले जाओ, मैं अलाउ करता हूँ आपको। तो हमने वो छुपा कर फिर ले गए, जनरली वो अलाउ नहीं कर रहे थे, तो अभी तो कर रहे हैं सारी चीजें। तो वैसे ही इस जगत से हम निकलना है, ट्रैवलिंग नहीं शुरू करनी है, तो हमें अपनी बैग, पूरा जीवन दिया है बैग पैक करने के लिए, तो बाकी चीजें मृत्यु के समय में अलाउ नहीं है, खाली कर देंगे आपकी बैग, क्या कर देंगे बैग खाली। तो फिर क्या पहले ज्ञात होना चाहिए कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। इसलिए तो हमें शास्त्र दिया है, इसलिए हमें भक्तों का संग दिया है, इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम है जिनको नियमित, जिसमें भाग लेने से गंभीरता से सीख कर श्रवण करके हमें ये ज्ञात होता है कि मुझे अपने बैग में क्या क्या डालना है। तो डालने योग्य एक ही वस्तु है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने कही है, और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार से इसके लिए सोचो, हम बहुत चीजों के लिए सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, लेकिन कभी हम भगवान नाम के बारे में गंभीरता से नहीं सोचते। इसलिए जब उस बालक, छोटा सा बालक था गोपाल,
उन्होंने कहा मृत्यु कभी भी आएगी, किसी भी क्षण आएगी, कृष्ण नाम निरंतर आपके जीवा में होना चाहिए।
तो वो आश्चर्यचकित होता है कि छोटा सा बच्चा लेकिन बड़ा ज्ञानवान है, तो बड़ा बुद्धिमान है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक के बारे में सोचा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह छोटा बालक जिसका नाम गोपाल है, अभी ये केवल गोपाल ही नहीं है, इसने भगवान नाम की शिक्षा सबको दी है, इसलिए आज से इस छोटे से बालक को क्या किस नाम से पुकारा जाएगा, गोपाल गुरु। किस नाम से? हाँ, गुरु बनना कितना इजी है कि नहीं? हाँ, केवल आपको भगवत नाम के सार को समझना होगा, नाम तत्व से नाम तत्व को आपको जानना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बालक गोपाल गुरु है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का जो पवित्र नाम है वो हर क्षण हर सिचुएशन में हमारे जिह्वा से निकलना चाहिए, और वही एक सारमय वस्तु है। जितने भी हमारे प्रयास हैं भगवत भक्ति में, जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, यात्राओं में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तुलसी धारण कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, हारमोनियम करताल से कीर्तन कर रहे हैं, वो एक ही चीज के लिए है, और वो चीज क्या है? कीर्तनीय सदा हरि, जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढव्रता। सतत कृष्ण के नामों का कीर्तन होना जीवन में, और उसमें दृढ़ भावना हमारी होनी चाहिए। तब भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने का सबसे सुलभ विधि में आपको अभी बता रहा हूं। अर्जुन पूछता है कृष्णा जल्दी बताओ, टाइम बहुत कम है। तो भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो अनन्य भावना से मेरा नित्य स्मरण करता है, तस्याहं सुलभ पार्थ। भगवान ने ये नहीं बोला तस्याहं दुर्लभ पार्थ, भगवान ने क्या बोला? तस्याहं सुलभ। हे अर्जुन, उस व्यक्ति के लिए मैं बहुत सुलभ हूं, बहुत सरल हूं उसको प्राप्त करना। तो इसलिए, लेकिन कैसे करना चाहिए? अनन्य चेता, अनन्य भावना से भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, और कैसे होना चाहिए? सततम। दो चीजें, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्यशः मतलब नित्य। तो अनन्य भावना से भगवान का नाम लेना और नित्य लेना। अभी हमारे पास अनन्य भावना भी नहीं है और नित्य भी नहीं है, तो हमारे लिए कृष्ण क्या है? दुर्लभ है, बहुत कठिन है। इसलिए बहु जन्मे करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन, ऐसा हजारों जन्म तक उच्चारण करते रहेंगे, करतल मृदंग टूट जाएंगे, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हाँ, तो भगवान का नाम अनन्य भावना से उच्चारण करना चाहिए। हम भगवान का नाम लेते हैं क्यों? क्योंकि मैं दुखी हूं, सुखी होना है इसलिए भगवान का नाम। बहुत शरीर में कष्ट है, चलो थोड़ा हरि नाम लेते हैं। घर में बहुत टेंशन का वातावरण है, चलो जाते हरि नाम में भाग लेते हैं। ऑफिस में बहुत सर के ऊपर बैठा है, चलो हरि नाम का जप करते हैं। स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, फेल हो रहा हूँ, घर के माता पिता डांट रहे हैं, चलो अच्छा है कीर्तन में भाग लेते हैं। तो हमारे पास या हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं ताकि थोड़े से लोग इम्प्रेस हो जाए, मेरे मधुर गायन से, मेरे ध्यान पूर्वक आंख बंद करके जप करने से क्या होगा, दूसरे लोग देखेंगे प्रभु जी कितने गंभीर हैं। और बीच बीच में हम आंख खोल के देखते हैं कि कौन मुझे देख रहा है, तिलक इसलिए लगा रहा हूं या धोती कुर्ता इसलिए पहन रहा हूं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ये टेंडेंसी जीव की हर समय है, हमें कृष्ण को इम्प्रेस करने का प्रयास करो।
ये जगत में है, हाँ ये टेंडेंसी बचपन से है, हम दूसरों को इम्प्रेस करते हैं जिसके कारण हमें इस भौतिक जगत में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। हाँ कृष्ण को इम्प्रेस करने का उपाय क्या है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानय देना कीर्तनीय सदाहरि। तो कृष्ण इससे इम्प्रेस होते हैं, त्रिनादपि सुनिचेना, विनम्रता की भावना को अपने हृदय में धारण करके, तरोरपि सहिष्णुना वृक्ष के समान सहनशील होकर, अमानिना मान देना चाहे मुझे कोई मान दे या ना दे, हाँ फिर भी मुझे तैयार होना है दूसरों को सम्मान देने के लिए। ऐसी भावना जिस भक्त के हृदय में है वही व्यक्ति वास्तव में कीर्तनीय सदाहरिक हो सकता है, हाँ या सतत कीर्तन कर सकता है, हाँ या सतत कीर्तन करने से ये भावना विकसित होगी। तो इससे वास्तव में कृष्ण इम्प्रेस होंगे, इससे कृष्ण हमारी ओर आकृष्ट होंगे। तो हमारे अंदर कई सारी भौतिक भावना है, अनन्य भावना हमारे पास नहीं है। अनन्य भावना क्या है, केवल कृष्ण को मैं आनंद देना चाहता हूँ, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे सेवा करनी है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे हरि नाम का उच्चारण करना है। अभी हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं कर्तव्य समझकर, कैसे, मेरा ड्यूटी है, अभी मैंने ड्यूटी बाउंड हूँ, 16 माला जप करना है या 2 माला 1 माला जप करनी है। कभी कृष्ण के बारे में सोचते नहीं, नहीं अरे कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब उनके नामों का उच्चारण किया जाता है, ये भावना कभी भी हमारे मन में या हृदय में नहीं है। इस भावना को हृदय में या मन में धारण करके हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। द्रौपदी भगवान को पुकारती है, और कैसे पुकारना चाहिए भगवान को, जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता से अलग हो जाता है और वो रोने लगता है। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि छोटा सा बच्चा माँ से बिछड़ जाता है। एक स्त्री को मैंने देखा था, हमें 2009 में 15 दिन के लिए गंगा सागर मेला में था, तो वहां जब मैं वापस आ रहा था तो इतनी सारी भीड़ थी वहां गंगा सागर से आते समय, तो एक स्त्री अपने परिवार वालों से अलग हो गए थे कुछ घंटों से, और वो इतनी भयानक रो रहे थे, मतलब उसका क्रंदन देखकर मेरे हृदय में ऐसे पिघलने लगा। मैंने कहा इतना तो हम कृष्ण के लिए भी हमारे हृदय में भावना नहीं है, हम सब भी कृष्ण से अलग हो गए हैं, जिस प्रकार से वो स्त्री अपने पारिवारिक लोगों से अलग हो गई है और उसको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मैं पारिवारिक वालों से, पारिवारिक लोगों से अलग हो गई हूँ, अभी मेरे लिए जीवन क्या है, सबसे अधिक भयावह है, कष्टप्रद है। हाँ तो वो इतनी पागल की तरह घूम रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, आंसुओं की धारा बह रही थी, उसके कपड़े मैले हो रहे थे, हाँ और अलग अलग पुलिस के पास जा रहे थे। तो वैसे ही हमारी दयनीय स्थिति है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात की अनुभूति नहीं है कि मैं कृष्ण का हूँ। किस बात की अनुभूति नहीं है, मैं कृष्ण का हूँ, हमें लगता है मैं मेरे माता पिता का हूँ, मैं फरीदाबाद का हूँ। हम कहाँ के हैं, वैकुंठवासी हैं। कौन से वासी हैं हम, फरीदाबाद वासी नहीं, हम वैकुंठवासी हैं, और यहाँ भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। और ये भावना तभी आती है तीव्रता जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं और गंभीरता से प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और जो हमें नियमित सेवा दी गई है उसमें अपना हृदय डालते हैं, अपना प्राण डालते हैं। छोटी सी छोटी भी सेवा हमें मिलती है उसमें क्या डालो, आप अपना हृदय डालो, अपने मन का डालो, और निरंतर सोचते रहो कि इसको मैंने और कैसे अच्छा करना है और इसको कैसे बेटर करना है। जैसे आप सोचते हो तो कृष्ण आपको बुद्धि प्रदान करते हैं, कृष्ण आपको सुविधा प्रदान करते हैं, आपके पास योग्यता है या नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं हाँ कि भगवान की कृपा से क्या संभव है, मुखम करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे। कहते हैं कि जो गुंगा व्यक्ति है, मूक है, वो भी क्या कर सकता है, बोल सकता है, और जो लंगड़ा व्यक्ति है जिसको चलना नहीं आता वो पहाड़ों को भी लांग सकता है। हाँ, तो लेकिन हम क्या करें, ये डिजायर रखें कि नहीं, मुझे जो भी कृष्ण की छोटी सेवा करने का मौका मिला है, चाहे जो मर्जी मेरी सेवा हो, मेरे पास प्रसाद बांटने की सेवा हो, मेरे पास झाड़ू लगाने की सेवा हो, मेरे पास करतार मृदंग लाने की सेवा हो, या मेरे पास भक्तों को लेने आने की सेवा हो, जो मर्जी सेवा हो, उसमें क्या डालना चाहिए, मुझे अपना हृदय को डालो और कृष्ण से प्रार्थना करो, मुझ में योग्यता नहीं है, आप मुझे योग्यता प्रदान करो। कृष्ण जब ऐसी इच्छा को देखते हैं तो वो सारी योग्यता उस भक्त के हृदय में डाल देते हैं और वो दिन ब दिन भक्त चमकने लगता है। प्रभुपाद के जीवन से आप देखो, प्रभुपाद अमेरिका गए, क्या था उनके पास, प्रभुपाद के पास कोई सुंदर आवाज थी क्या, कि बहुत मेलेडियस गाया करते थे कि उनकी आवाज से सारे अट्रैक्ट हो गए, ऐसा कुछ था, या उनके पास बहुत धन ऐश्वर्य था जिसके द्वारा लोगों को उन्होंने आकर्षित किया, हाँ, या वो बहुत धार जैसे आजकल के वक्ता बहुत प्रवचन देने में बड़े माहिर हैं, ऐसी वक्तृत्व शैली भी प्रभुपाद के पास नहीं थी, भौतिक दृष्टि से देखे, दूसरे दृष्टि से तो। लेकिन प्रभुपाद जाने से पहले, पहुंचने से पहले वो कविता लिखते हैं और जिसमें कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्णा, आप मुझे यहाँ भारत से इतने दूर ऐसे बेहद स्थान में लाए हो, यहाँ लोगों का जीवन तो पशु के भांति है, यहाँ के लोग तो रजोगुण और तमोगुण में मग्न है, इनको मनुष्य जीवन का कोई भान नहीं है, तो ये लोग कैसे आपके संदेश को सुन सकते हैं, और आप मुझे इतना दूर लाए हो, बल्कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि आप क्या करो, पाश्चात्य जगत में जाकर इस कृष्ण भावना का प्रचार करो, उनकी दी हुई सेवा को करने के लिए मैं आया हूं, मेरे पास ऐसी कोई खास योग्यता नहीं है, लेकिन आप मुझे क्या करो, वो योग्यता प्रदान करो। योग्यता विचारे किछु नहीं पारे तुम्हारा करुणा सार, हे कृष्णा, हे गुरुदेव, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आपकी करुणा पर मैं जीवित हूं, आप मुझ में योग्यता दे दो। हाँ, तो गुरु या कृष्ण हमें सारे गुण प्रदान करते हैं और हम खुद आश्चर्यचकित होते हैं, हाँ, कि हम कैसे कैसे कार्य कर बैठते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। तो प्रभुपाद ने ये प्रार्थना की तो एक आश्चर्य हुआ, क्या हुआ कि प्रभुपाद ने इतना अमेजिंग कार्य किया। प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था, सिंपल एक करतार और मृदंग भी नहीं था, उसको प्रभुपाद कहते हैं मेरे पास डुगडुगी थी, क्या था, एक छोटा सा सिंगल साइड का मृदंग जैसा होता है, उसको बजाते थे, वह डुगडुगी प्रभुपाद कहते एक प्रवचन में, उसको लेकर मैं एक पेड़ के नीचे गया और वहां मैंने ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना शुरू किया और कृष्ण ने फिर सारे लोगों को भेजा। किसने भेजा, कृष्ण ने भेजा। केवल एक व्यक्ति के हृदय में यह सिंसियर इच्छा थी सेवा करने की, हरि नाम प्रदान करने की, तो कृष्ण ने भक्तों को भेजा, कृष्ण ने सारे जीवों को भेजा जो प्रभुपाद के लिए आवश्यक थे, ऐसे ऐसे युवकों को भेजा, युवतियों को भेजा जिन्होंने अपना जीवन दान दे दिया। कौन दे सकता है अपना जीवन किसी व्यक्ति के लिए, हम अपने माता पिता की केयर नहीं करते, अपने माता पिता को हम अपना जीवन नहीं देते, देते है क्या, नहीं। हमारे जीवन में पत्नी आ जाती है तो माता पिता गायब हो जाते हैं जीवन से, लेकिन यहाँ उन युवक युवतियों ने जो अमेरिकन है, जिनके पास धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, उन्होंने अपना जीवन, अपनी युवा अवस्था, बुढ़ापे में तो कोई भी आता है, लेकिन क्या है, अपनी युवा अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी युवा अवस्था किसके चरणों में डाल दी, प्रभुपाद के चरणों में। किसने भेजा उनको, कृष्ण ने। किसने प्रेरित किया, कृष्ण ने, हाँ, क्योंकि प्रभुपाद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते थे, जब हम अपने लिए करना चाहते हैं तो फिर हम उन्नति नहीं कर सकते, कृष्ण के प्रिय नहीं बन सकते। जब हम कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, गुरु के लिए करना चाहते हैं, तो फिर कृष्ण सारी सुविधा हमारे पास भेज देते हैं। हाँ, और हम भगवत सेवा और हाँ शक्तिशाली रूप से हाँ कर पाते हैं। तो इसलिए परम आवश्यक है कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ ये जो हरि नाम संकीर्तन है, इसको पहले अपने जीवन में भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए। जीवन सार्थक करे कर पर उपकार, चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है उस व्यक्ति को अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए, और अपना जीवन ही सार्थक नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरों पर भी परोपकार करना चाहिए। अपना जीवन सार्थक करने का मतलब है कि भक्ति को गंभीरता से ले लो। अभी बहुत हो गया, हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। अभी बहुत साल हो गए डीएवी में आकर, मुझे कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, और कुछ परिवर्तन ही नहीं है, केवल कपड़े बदलते जा रहा हूं। हर संडे नए नए डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहन के आता हूं, लेकिन अंदर हृदय की स्थिति कोयले के समान जैसे कि तैसी है। कुछ परिवर्तन चाहिए, हमें अपने जीवन में क्या करना होगा, परिवर्तन लाना होगा, और उसके लिए थोड़ा सोचना होगा। जैसे जो सिंह होता है थोड़ा चलता है और फिर बैठता है और रुक के पीछे देखता हूं मैं कहां तक आया हूं, इसको क्या कहते हैं सिंहावलोकन, क्या कहते हैं। तो वैसे ही हमें होना चाहिए कि अभी सिंहावलोकन करने का समय आ गया है, अभी बहुत हो गया, लंबे समय से अभी डीएवी में आ रहा हूं, अभी मेरी भगवत भक्ति का क्या हो रहा है, भगवत भक्तिमय जीवन वैसे की वैसा ही है। हाँ, हरे नाम घिसा पीटा जप कर रहा हूं, वो भी पूरा दिन लगता है, कभी करता हूं हफ्ते में 4 बार तो छूट जाता है, क्या होता है 4 बार तो हरे नाम जप करना छूट जाता है, और जब भक्त पूछते हैं तो सीना तान के बोलता हूं नहीं रोज में माला करता हूं, ये कपटता आ जाती है। भक्ति करते करते फिर एक कपट भावना का उदय होता है, तो सबसे पहले हम अपने आप को धोखा देना शुरू करते हैं और फिर दूसरों को धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा देने का मतलब क्या है, अपने आप को धोखा देना, अपने आप को अंधकार में डालना, अपने आप को गड्ढे में गिरा देना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, चैतन्य महाप्रभु को कपटता पसंद नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोला है पतित पावन, क्या बोला है, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा पतित पावन हेतु तव अवतार, हे चैतन्य महाप्रभु आप पतितों को पावन करने के लिए अवतरित हुए हो। मौसम पतित प्रभु ना पाए व्यार, वो ये भी बोल सकते थे कपट पावन हेतु तव अवतार, मौसम कपट प्रभु ना पाए व्यार। चैतन्य महाप्रभु को नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसे नहीं कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा पतितों को पावन करने वाले हैं, हाँ तो हम प्रयास करें। हाँ, हमें पता है हम बहुत पतित हैं, अदम हैं, नीच हैं, अयोग्य हैं, लेकिन हम अपने प्रयास को ना छोड़ें और गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन को लेने का प्रयास करें। विशेष रूप से जो हरे कृष्ण महामंत्र का निर्धारित संख्या में जप करना है वो प्रयास करना चाहिए। हाँ, सुबह के समय हम करें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाँ पहली चीज पहले ही करनी चाहिए, और वो पहली चीज क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहली चीज पहले लाइफ में पहली चीज क्या है, कृष्ण नाम, फिर बाकी उसके बाद सीक्वेंस बनाओ। जीवन दिन शुरू करो कृष्ण नाम से, हाँ दिन का एंड होना चाहिए कृष्ण नाम से। हाँ, तो ये बहुत भाग्य की बात है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शयने की भोजने की बा जागरणे, अहर निशह बलह कृष्णह बलह वदने, क्या सोते समय जागते समय निरंतर दिन हो या रात्रि सदैव कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। तो इसलिए यह अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में एक तो खुद भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का प्रयास करो और दूसरों को भी हरे कृष्ण मंत्र दो, हरि नाम करने के लिए प्रेरित करो। हाँ, तो कम से कम इस हफ्ते दूसरों को नहीं तो अपना नाम सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम क्या करो, मेरे जप की बहुत बुरी हालत है, हाँ जप कम गप ज्यादा, हाँ क्या है हमारी स्थिति। हाँ, शास्त्र कहते हैं सेवा ऐसी करनी चाहिए जैसे काम करते हो, जप ऐसा करना चाहिए जैसे भोजन करते हो, है ना। कैसे जप करना चाहिए, भोजन में कितना उत्साह है हमें, हाँ शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं। तो हरि नाम भगवान का नाम जप करते समय कैसे होना चाहिए, जैसे हम प्रसाद फिस्ट को खा रहे हैं। एक क्या हम वेट करते ना अभी आगे क्या आएगा, मायापुर आप गए हो तो प्रसादम की थाली आपके सामने होती है, इतना बड़ा किचन है इस्कॉन मायापुर में, हजारों लोग बैठते हैं, तो वहां एक के बाद एक सर्विंग करने वाले भक्त आते हैं और वह पता नहीं रहता कि क्या आने वाला है और कितनी बार क्या क्या चीजें आने वाली है। तो दो तीन चीजें आ जाती है, लगता है कि जो नया व्यक्ति होता है उसको लगता है कि अभी इतनी चीजें है, पूरा भर के लेता है, लेकिन बाद में पता नहीं, बाद में है, फिर दो तीन सब्जी और भी आती है, फिर स्वीट्स भी आते हैं, फिर पापड़ भी आता है, बहुत कुछ आता है। हाँ, तो वैसे ही है, पर हम उत्साहित रहते हैं। हाँ, तो वैसे ही हमें भगवान नाम का उच्चारण करने के लिए करना चाहिए। भक्तिनोद ठाकुर ने तीन हरि नाम को सुधारने का, अपने जप को सुधारने का तीन एक स्टेप दिया है। उन्होंने कहा सबसे पहले ये ज्ञात रखो, सबसे पहले चीज एक भक्त को पता होनी चाहिए कि कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले इसका ज्ञान अर्जन करो, इसको समझने का प्रयास करो। हाँ, तो जब हमें ये पता चलता है कि कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है तो हम कभी भी असावधान नहीं रहते, ध्यान लगाते, ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को सुनते हैं हम और ये महसूस करते कि नहीं ये कृष्ण है, हाँ मुझे कृष्ण को कृष्ण के जैसे ही ट्रीट करना है, हाँ तो हम फिर अपराध नहीं करते। और दूसरी चीज भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये बात एक भक्त को अवगत होनी चाहिए, हाँ दूसरी चीज कि भगवान से भगवान नाम का उच्चारण करने की भीख मांगनी चाहिए हमें। क्या मांगनी चाहिए, भिखारी बनना चाहिए हमें। क्या बनना है, भिखारी। कोई कहेगा यार भिखारी बनने थोड़ी आए हम, हाँ लेकिन भगवान का नाम तब तक हमारी जीवा में नहीं आ सकता निरंतर जब तक हमारे हृदय में भिखारी की भावना ना हो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में कहते हैं हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी जीव जागो जीव जागो। इस गीत को आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी, कि आप क्या करो भगवान कृष्ण से चैतन्य महाप्रभु से ये हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने की भिक्षा मांगो कि हे कृष्ण कृपा करके आप मुझे आपका हरि नाम प्रदान कीजिए, आपका नाम करने की मुझमें योग्यता नहीं है, आप मुझे शक्ति सामर्थ्य दीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाइए उनके सामने। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा एकाकी आमार नाही पाए बल हरि नाम संकीर्तने तुम्ही कृपा करी। कृष्ण कहते हैं कि आप कृपा करो कि श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, कि मेरे हृदय में श्रद्धा दे दो, प्रगाढ़ दृढ़ श्रद्धा और कृष्ण नाम रूपी धन, ताकि मैं प्राप्त कर सकूं। भगवान नाम को प्राप्त करने का एक ही धन मूल्य है, वो क्या है, श्रद्धा। जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी उतना ही हरि नाम हमारा बेटर होते जाएगा, अच्छा होते जाएगा भगवान का नाम। इसलिए ऐसे लोगों का संग मत करो जिनकी जो हमारी श्रद्धा को ठेच पहुंचाते हैं। इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत लोगों के संग में मत जाओ, अधिक से अधिक भक्तों का संग करो और निरंतर ग्रंथों को पढ़ो। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने से हम जीवित रहते हैं, नहीं तो वो व्यक्ति भक्ति में मरा हुआ है। क्या है? मरा हुआ है। उससे भगवत भजन कदापि होगा नहीं, हरिनाम उच्चारण उसके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद के ग्रंथों को रोज किसी भी स्थिति में हमें पढ़ना चाहिए। जब इच्छा करेंगे तो कृष्ण हमें समय और बुद्धि और शक्ति देंगे, ग्रंथों को पढ़ने के भी और समझने की योग्यता भी हमें प्रदान करेंगे। तो इसलिए ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या है कि भगवान के नामों को पुकारना कैसे चाहिए? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया? अई नंद तनुज किंकर पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज सित धुलि सदृशम विचिंतय। कि हे नंद तनुज कृष्णा, मैं इस भौतिक जगत में गिर पड़ा हूं और इस संसार में ऊपर नीचे गोते लगा रहा हूं, बहुत भयावह स्थिति में मैं हूं। आप मुझे क्या करो, इस भयावह स्थिति से उबारो और आपके चरण कमलों में धूलि का कण बना लीजिए। इस प्रकार के हृदय में भावना होनी चाहिए, पुकारने का एटीट्यूड होना चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए। जब हम ऐसे पुकारेंगे कृष्ण को कि हे कृष्ण कृपया मुझे आप ले लो आपके चरण कमलों में, मुझे निकालो यहाँ से बाहर, तो ऐसी विनम्रता की भावना, क्योंकि भिक्षा वही मांग सकता है जिसमें विनम्रता हो। हमारे हृदय में विनम्रता की भावना है तभी हम भगवान से भीख मांगे कि नहीं मुझे चाहिए। जिसमें अहंकार है, घमंड है, गर्व है, अपने ज्ञान का, अपने सौंदर्य का, आपके अपने सुंदरता का, अपने धन का, अपने सामाजिक पद पोजीशन का, वो कभी भी भगवान से भिक्षा मांग नहीं सकता। भगवान से याचना करने की भावना उसके अंदर कदापि नहीं आ सकती। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जिनका आज आविर्भाव है, जो महान नाम के आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर भी, तो ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जो स्वयं ये गृहस्थ थे, उनके 10 बच्चे थे, उन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों लिखे, इतना होकर भी उन्होंने कितने हजारों नामहट चलाते थे। भक्ति विनोद ठाकुर कितने नामहट चलाते थे, हम तो एक प्रोग्राम यहाँ चलाने में हम परेशान है। भक्ति विनोद ठाकुर ने नामहट खोले थे जिनका नाम उन्होंने रखा था प्रपन्नाश्रम। प्रपन्न मतलब शरणागति, तो उसको कहा करते थे वो प्रपन्नाश्रम, जिसमें हजारों लोग थे जो हरि नाम का जप करते थे। 1800 स्त्रियां प्रचारक थी और कितने बड़ा उनके पास मोमेंट था। ये गृहस्थ थे, दिन भर अपना ऑफिस का कार्य करते थे और निरंतर भगवत सेवा में नियुक्त रहते थे। और वो रात्रि के समय में अपने घर में 12 से 4, वो जब मायापुर में रहते थे अपने अंतिम समय में कुछ साल, तो वो हरि नाम का जप करते थे। तो उनको पड़ोसी कहते थे ऐसे लगता है कि उनका कुटिया या घर क्या हो रहा है, हिल रहा है, या ऐसी आवाज आती थी कि कोई व्यक्ति रो रहा है। और वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? आत्मारत्रंदन, शास्त्र कहते हैं आत्मा का रोना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना मीन्स कृष्ण के लिए रोना। और वो रोने की आवाज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोने की आवाज तो जब बच्चे रोते तो वैसी एक आवाज होती है, लेकिन आत्मा जब रोता है कृष्ण के लिए तो कौन सी आवाज निकलती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं अपने आचरण से सिखाने के लिए। वो खुद भी कृष्ण के लिए रोए हैं और सबको उन्होंने कृष्ण के लिए कैसे रोना चाहिए वो सिखाया। और वो कैसे रोना सिखाया? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। इसलिए हमें रोना सीखना है। हम तो बचपन से रो रहे हैं, है कि नहीं? माँ के गर्भ से बाहर निकलते कि नहीं रोने लगते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते कि नहीं तो रोते रहते हैं, स्कूल में जाते हैं तभी भी रोते हैं, कॉलेज में जाते हैं रोते हैं, शादी करते हैं तो रोते हैं, उसके बाद और रोते हैं, मृत्यु आती है तो बहुत रोते हैं। हाँ, लेकिन सारे भौतिक चीजों के लिए रोना है। हाँ, लेकिन एक चीज के लिए रोना भूल गए हम, किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए रोना ही हमारा असली रोना है, नहीं तो माया लाते मार मार के रुलाएंगे। माया क्या करेगी, आपको चुप बैठने नहीं देगी। कभी शरीर के प्रॉब्लम, कभी मन के प्रॉब्लम, कभी दूसरा परेशान कर रहा है। हाँ, तो कभी क्या क्या हो रहा है समाज में, तो मतलब माया देवी हमेशा रुलाती है। और दूसरी माया देवी क्या है, जो सब सब लोग उसके लिए रो रहे हैं, वो है धन। क्या है? हर कोई उसके लिए रो रहा है, इसलिए धन को कहते दौलत। क्या कहते हैं? हाँ, दौलत कहते ना। वो आती है तो भी दिमाग खराब हो जाता है, चली जाती है तो उसके विरह में हम परेशान रहते हैं। हाँ, दौलत मीन्स दो लात है ना, वो दो लात मारती है हमें, ठीक करती है। तो इसलिए चाहे संसार में हम जहां भी हो, जिस किसी स्थिति में हो, हाँ, हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण नाम का उच्चारण करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे कोई कहे कि आप कौन से आंदोलन में हो, तो हम कहते हैं हम हरे कृष्णा मोमेंट में हैं, हरे कृष्णा आंदोलन में हैं। तो हरे कृष्णा आंदोलन में है तो हरे कृष्णा जप करने में एक्सपर्ट होना चाहिए। बाकी चीजों में एक्सपर्ट हो या ना हो, हरे कृष्णा वाले हो तो किस में एक्सपर्ट होना चाहिए? हरे कृष्णा में। ये नहीं कि योगा करने में, प्राणायाम करने में एक्सपर्ट है, वो सब नहीं चलेगा। किस में एक्सपर्ट होना होगा? हाँ, वही व्यक्ति तर सकता है, हाँ, जो हरे कृष्णा का उच्चारण करने में क्या है, एक्सपर्ट है। हाँ, तो वो तभी संभव है जब हम निरंतर भक्तों के संग में आते हैं और हृदय में सीखने की भावना धारण करते हैं। कौन सी भावना? मुझे सीखना है, और सीखकर अपने जीवन में लगाओ डालो। दूसरा क्या कर रहा है उसको मत देखो, क्या करो पहले, चैरिटी बिगिंस होम। हाँ, दान अपने से शुरू करो। ये नहीं कि तुम दान करो, तुम दान करो, तुम दान करो, लेकिन मैं दान नहीं करूंगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, आप भगवद गीता स्पॉन्सर करो, आप भगवद गीता स्पॉन्सर करो, आप करो, लेकिन मेरे मुझे पूछा जाए तो मैं नहीं करूंगा। तो वैसे हमारी स्थिति है। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम शुरू करें अपने जीवन में गंभीरता से, और उसके लिए भगवान ने इतनी व्यवस्था की है। प्रभुपाद ने अपना जीवन लगाया, इतनी सुविधा दी, भक्त दिए, मंदिर दिए, प्रोसेस दिए, प्रसाद दिया, ग्रंथ दिए, प्रोग्राम्स दिए, तुलसी महारानी दी। हाँ, तो इस प्रकार से आप सब लोग इस महान संकीर्तन यज्ञ में भाग ले सकते हैं, हाँ, जो एक हफ्ते के लिए चल रहा है। एक हफ्ते के लिए नहीं, लाइफ टाइम का ये महायज्ञ है। एक हफ्ते तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें अभी भी एक हफ्ते तक बहुत प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद भी वो प्रयास कंटिन्यू होना चाहिए, हाँ, ताकि हमारा जो जीवन है जिसमें परिवर्तन आ सके। और हम किसके लिए रोना सीखे? कृष्ण के लिए। और रोने की आवाज कैसे निकलनी चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरिनाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।